यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 30 अक्टूबर 2020 के बुलेटिन की सुर्खियां। महिला सशक्तिकरण के लिए पारित प्रस्ताव 1325 की 20वीं वर्षगांठ, महिला नेतृत्व बढ़ाए जाने का आह्वान। फ्रांस में एक चर्च में हुए हमले की तीखी निंदा, समुदायों के बीच भाईचारा व आपसी सम्मान कायम रखने की पुकार। भविष्य में कोरोना वायरस जैसी महामारियां रोकने के लिए वन्य जीवों, मवेशियों और इंसानों के बीच संपर्क समझने की जरूरत पर जोर। म्यांमार में चुनाव से पहले के माहौल में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता और कोविड-19 अपडेट के साथ साथ कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव यानी विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए ताज़ा समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संस्था यूएन वुमेन की प्रमुख पुमजिले म्लाम्बो न्गुका ने आगाह किया है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण प्रक्रियाओं में महिलाओं को अब भी समुचित प्रतिनिधित्व हासिल नहीं है। उन्होंने गुरुवार को सुरक्षा परिषद को मौजूदा हालात से अवगत कराते हुए कहा कि हिंसाग्रस्त इलाकों में महिलाओं के लिए परिस्थितियां कहीं ज्यादा खराब हैं।
In war zones and everywhere in the world, women and people are calling for inclusion and representation, which is one of the main reasons why so many ordinary people are taking to the streets, organizing protests and raising their voices.
युद्धग्रस्त इलाकों और दुनिया में हर जगह लोग समावेश और प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। आम लोग इन्हीं कारणों से सड़कों पर उतरकर धरने प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हुए अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। युवा महिलाएं और शांति रक्षक अपने काम के जरिए बदलाव लाने के लिए तत्पर हैं। वो बदलाव चाहती हैं और वो समावेश चाहती हैं।
यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक पुमजिले म्लाम्बो न्गुका के शब्द। इस बीच यूएन प्रमुख महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने भी सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए एक बार फिर वैश्विक युद्ध विराम की अपनी अपील दोहराते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी परीक्षा है। उन्होंने एक तात्कालिक वैश्विक युद्ध विराम की अपील करते हुए इंसानियत के साझा दुश्मन कोरोना वायरस का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। यूएन प्रमुख के मुताबिक महिलाएं महामारी का मुकाबला करने के प्रयासों में अग्रिम मोर्चों पर डटी हैं और अपने समुदायों, अर्थव्यवस्थाओं व समाजों में नर्सों, शिक्षकों, देखभाल कर्मियों, किसानों व अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में जिम्मेदारी निभा रही हैं। साथ ही दुनिया भर में वे स्थानीय स्तर पर और समुदायों में शांति निर्माण में भूमिका निभा रही हैं। महासचिव गुटेरेश ने 20 वर्ष पहले पारित हुए ऐतिहासिक प्रस्ताव 1325 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद ने वैश्विक युद्ध विराम को समर्थन देकर महिलाओं, शांति और सुरक्षा एजेंडा में मजबूत और मूल्यवान संबंध स्थापित किया है। ये प्रस्ताव शांति व सुरक्षा से जुड़े हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत की तरफ ध्यान खींचता है। साथ ही इससे लैंगिक असमानता व नाजुक हालात और महिला सुरक्षा व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंध रेखांकित होता है।
Women's leadership and decision making is not a favor to women. It is essential to peace and progress for all. We cannot hope to turn the climate crisis around, reduce social divisions or make sustained peace without the full contributions of all of society.
महासचिव कह रहे थे कि नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल किया जाना उन पर कोई मेहरबानी नहीं है, बल्कि सभी इंसानों की प्रगति व शांति के लिए ये बहुत जरूरी है। संपूर्ण समाज के पूर्ण योगदान के बिना हम जलवायु संकट को बदलने, सामाजिक विभाजन को कम करने और टिकाऊ शांति कायम करने की उम्मीद नहीं कर सकते। इस महामारी के संकट से उबरने और एक ज्यादा शांतिपूर्ण व टिकाऊ भविष्य का निर्माण करने के लिए हर क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व बहुत अहम होगा। महिलाएं शांति और सुरक्षा एजेंडा लागू करने के लिए हम और 20 वर्ष इंतजार नहीं कर सकते। आइए आज ही मिलकर काम शुरू करें। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने प्रस्ताव 1325 का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया कि कोविड-19 का महिलाओं व लड़कियों पर गैर आनुपातिक असर हुआ है। उनके खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य देखभाल, यौन व प्रजनन सेवाओं के लिए निर्धारित संसाधन अन्य मदों पर खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए रोजगार के दीर्घकालीन अवसरों और लड़कियों की शिक्षा पर भी असर पड़ा है। भविष्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शांति प्रक्रियाओं में भी उनके हाशिएकरण का शिकार होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने फ्रांस के दक्षिणी शहर नीस के एक चर्च में चाकू से किए गए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। खबरों के अनुसार गुरुवार को हुए इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस के उच्च प्रतिनिधि मिगेल मोराटिनोस ने इस बर्बर हमले की निंदा करते हुए सभी धर्मों व आस्थाओं में पारस्परिक सम्मान और भाईचारे व शांति की संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने की पुकार लगाई है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन महासचिव ने अपने बयान में पीड़ितों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और फ्रांस की सरकार और स्थानीय जनता के साथ संयुक्त राष्ट्र की एकजुटता को प्रदर्शित किया है। मीडिया खबरों के अनुसार चाकू से लैस एक हमलावर ने नीस के केंद्रीय इलाके में स्थित नोट्रडेम बेसिलिका में करीब सुबह 9 बजे प्रवेश किया। इस हमले में एक पुरुष और महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसकी बाद में मौत हो गई। नीस शहर में गुरुवार को हुए इस हमले से करीब 2 सप्ताह पहले राजधानी पेरिस के नजदीक एक इलाके में शिक्षक सैमुअल पैटी का सिर धड़ से अलग करके हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि शाली एब्दो मैगजीन में प्रकाशित इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद के कार्टून शिक्षक सैमुअल पैटी द्वारा स्कूल की कक्षा में दिखाए जाने के विरोध में यह हमला किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और स्थानीय लोगों ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। राष्ट्रपति मैक्रों ने कार्टूनों के पुनः प्रकाशन को सही ठहराया था, लेकिन उनके इस फैसले का मुस्लिम देशों में विरोध हुआ है। धार्मिक स्थलों की रक्षा और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी मिगेल मोराटिनोस ने गुरुवार को हुए इस हमले को बर्बर बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हर वो हमला जिसमें श्रद्धालुओं सहित आम लोगों को निशाना बनाया जाए वो असहनीय है और उसे किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस के उच्च प्रतिनिधि ने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों के बाद आपसी सम्मान और शांति के प्रयासों को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे पहले बुधवार को जारी अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद की तस्वीरें फिर से प्रकाशित किए जाने से अनेक मुसलमानों को ठेस पहुंची है और उनके लिए ये अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि धर्मों और पवित्र धार्मिक प्रतीकों का अपमान किए जाने से नफरत और हिंसक चरमपंथ भड़कता है, जिससे समाज में विभाजन और ध्रुवीकरण बढ़ता है। उच्च प्रतिनिधि ने सभी धर्मों व आस्थाओं में पारस्परिक सम्मान और भाईचारे व शांति की संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने की पुकार लगाई है।
संक्रामक बीमारियों का मुकाबला करने की रणनीतियों में अगर व्यापक फेरबदल नहीं किए गए तो भविष्य में नई वैश्विक महामारियों के उभरने व फैलने की रफ्तार और ज़्यादा तेज़ होगी, जो कि बड़ी संख्या में लोगों की मौतों और विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का कारण बनेंगी। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने गुरुवार को प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट में अपनी ये चेतावनी जारी की है। ये रिपोर्ट इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज यानी IPBES द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यशाला में हुई चर्चा के आधार पर तैयार की गई है। विचार विमर्श सत्र का उद्देश्य महामारियों के जोखिमों के बढ़ने और प्रकृति क्षरण में वृद्धि के बीच के संबंधों की पड़ताल करना था। रिपोर्ट दर्शाती है कि यह खतरा तेजी से बढ़ रहा है और हर वर्ष लोगों में 5 नई बीमारियों का पता चल रहा है, जिनमें से कोई भी बीमारी वैश्विक महामारी फैलने का कारण बन सकती है। 22 विशेषज्ञों ने कहा कि वर्ष 1918 में फैली महामारी स्पेनिश फ्लू के बाद ये कम से कम 6ठी बार है जब किसी विश्वव्यापी महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया है। इस नई महामारी का स्रोत जानवरों में पाए जाने वाले रोगाणुओं में है, लेकिन अन्य वैश्विक महामारियों की तरह इसके उभरने के लिए मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संरक्षित इलाकों की रक्षा करने और जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी घटने के लिए जिम्मेदार मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने के उपाय करके विश्वव्यापी महामारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। इससे वन्य जीवों, मवेशियों और इंसानों के बीच संपर्क में कमी लाने में मदद मिलेगी और नई बीमारियों के वन्य जीवों से इंसानों तक के प्रसार की कड़ी को रोका जा सकेगा। वैज्ञानिक तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं। ध्यान दिला दें कि इस रिपोर्ट पर अभी IPBES में विस्तार से चर्चा नहीं हुई है और ना ही इसे स्वीकार किया गया है, इसलिए ये अंतर सरकारी रिपोर्ट नहीं है। ये उन 22 विशेषज्ञों की राय और तथ्यों को पेश करती है जिन्होंने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया था। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 ने निर्धनतम देशों में स्कूली बच्चों को लगभग 4 महीने की पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया है, जबकि उच्च आय वाले देशों में बच्चों की 6 हफ्ते की पढ़ाई पर ही असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और विश्व बैंक की एक साझा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यह रिपोर्ट कोविड-19 और महामारी से शिक्षा पर हुए असर के आकलन के लिए कराए गए सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसे जून से अक्टूबर 2020 में 150 से ज्यादा देशों में कराया गया। निम्न और निम्नतर मध्य आय वाले देशों में इस समस्या का विकराल रूप दिखाई देता है। इन देशों में दूरस्थ पढ़ाई की सीमित सुलभता है और बजट कटौतियों में बढ़ोतरी और पाबंदियों को हटाने में देरी के कारण स्कूली बच्चों के लिए स्थिति सामान्य होने के अवसरों में रुकावट आई है। इन हालात में यूनिसेफ ने स्कूलों को फिर से खोलने और छूट गए जरूरी पाठ्यक्रम को पूरा करने को बेहद अहम बताया है। बताया गया है कि निम्न और निम्नतर मध्य आय वाले देशों में स्कूली बच्चों के लिए घर बैठकर पढ़ाई जारी रख पाना और पढ़ाई में रुकावट आने से हुए नुकसान की निगरानी कर पाने की संभावना सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वेक्षण किए गए 2/3 से ज्यादा देशों में आंशिक या पूर्ण रूप से स्कूलों को फिर से खोले जाने की घोषणा की जा चुकी है। इसके बावजूद हर 4 में से 1 स्कूल को तयशुदा समय पर या तो खोला नहीं जा सकता है या फिर वहां कक्षाएं शुरू करने के लिए तारीख निर्धारित नहीं हो पाई है। इनमें से अधिकांश स्कूल निम्न और निम्नतर मध्य आय वाले देशों में हैं। बहुत से निम्न और निम्नतर मध्य आय वाले देशों में शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बजट में गिरावट आई है या फिर मौजूदा और आगामी वित्तीय वर्ष में कटौती की आशंका है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रियसस ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उन मामलों पर चिंता जताई है जो कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बावजूद लंबे समय तक अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वायरस से जान के खतरे के अलावा स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन असर का भी जोखिम है। इस बीच कोविड-19 से मुकाबला करने में संयुक्त राष्ट्र की 3 प्रमुख एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने वैज्ञानिक शोध को सभी के लिए सुलभ बनाए जाने यानी ओपन साइंस की दिशा में वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए UN स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान ऐसे मरीजों के मामले लगातार सामने आए हैं जो कोविड-19 के दीर्घकालीन प्रभावों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये चिंताजनक है कि उनके लक्षण अनेक प्रकार के हैं जो समय के साथ बदलते हैं और शरीर के किसी भी अंग या प्रणाली पर असर डाल सकते हैं।
From fatigue, a cough and shortness of breath to inflammation and injury of major organs, including the lungs and heart.
महानिदेशक गेब्रियसिस कह रहे थे कि ये लक्षण थकान, खांसी और सांस फूलने से लेकर फेफड़ों और दिल सहित अन्य अंगों में सूजन या चोट हो सकते हैं। इसके मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल या तंत्रिका संबंधी असर भी होते हैं। UN एजेंसी के प्रमुख के मुताबिक इस वायरस के बारे में जानकारी अब भी जुटाई जा रही है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये महज एक ऐसा वायरस नहीं है जो लोगों की जान लेता है। बड़ी संख्या में लोगों में ये लंबे समय के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बन सकता है। इन समस्याओं से लोग उबरते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी है जिसमें कभी कभी हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है। कोरोना वायरस के दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रभावों का सामना कर रहे लोगों की संख्या के संबंध में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के बाद उसके अन्य लक्षण या जटिलताएं अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों और घरों में ही स्वास्थ्य लाभ करने वाले दोनों प्रकार के संक्रमितों में देखने को मिले हैं। ऐसे मामले महिलाओं और पुरुषों, युवाओं और बुजुर्गों और यहां तक कि बच्चों में भी सामने आए हैं। UN एजेंसी ने कोविड-19 संक्रमण से मरीजों के पूरी तरह जल्द से जल्द उबरने के लिए और स्वास्थ्य जटिलताओं की रोकथाम के लिए रिसर्च जारी रखने की बात कही है। एजेंसी का कहना है कि इससे स्वास्थ्य देखभाल के सर्वश्रेष्ठ मानकों और उपायों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने कहा है कि कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में ये समय विज्ञान से मिलने वाले लाभों को सभी के लिए सुनिश्चित करने का है। इसके लिए वैज्ञानिक शोध को सभी के लिए सुलभ बनाए जाने का आह्वान किया गया है। यूएन अधिकारियों का कहना है कि अक्सर गुप्त या बौद्धिक संपदा द्वारा संरक्षित रखे जाने वाले डेटा और जानकारी को साझा करने से टेक्नोलॉजी के विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR ने म्यांमार में मानवाधिकार हनन के मामलों और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलने पर गहरी चिंता जताई है। मंगलवार को यूएन कार्यालय की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया जब म्यांमार में 8 नवंबर को होने वाले आम चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। जिनीवा में यूएन मानवाधिकार कार्यालय की एक प्रवक्ता रवीना शुमदसानी ने बताया कि रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय और जातीय राखीन जनसमूह के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदायों पर गैर आनुपातिक असर हुआ है। ये चुनाव म्यांमार के लोकतांत्रिक दिशा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन विचारों, अभिव्यक्ति और सूचना पाने की आज़ादी पर पाबंदियां जारी रहने से नागरिकों के लिए स्थान को अब भी नुकसान पहुंच रहा है। प्रवक्ता ने ऐसी भाषा के इस्तेमाल के प्रति आगाह किया जिससे भेदभाव, दुश्मनी और हिंसा को भड़काया जा सकता है। यूएन मानवाधिकार प्रवक्ता ने विरोधी विचारों और नीतियों व कार्रवाई की आलोचना के प्रति सरकार और सैन्य नेतृत्व की असहिष्णुता पर भी चिंता जताई। पिछले 2 महीनों के दौरान अनेक छात्र कार्यकर्ताओं पर आरोप तय किए गए हैं और 4 छात्रों को विभिन्न कानूनों के तहत 6 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मानवाधिकार प्रवक्ता ने म्यांमार सरकार से आग्रह किया कि जिस किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है उनके खिलाफ लगे आरोप वापस लिए जाएं। चुनावों से पहले के संदर्भ में ये विशेष रूप से एक मूल्यवान अधिकार है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय के मुताबिक म्यांमार में नागरिकता और चुनाव संबंधी भेदभावपूर्ण कानून हैं जिनमें नागरिकों के विभिन्न वर्गों को भिन्न भिन्न अधिकार दिए गए हैं। बताया गया है कि इन कानूनों का सबसे ज़्यादा नकारात्मक असर मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों पर हुआ है जिन्हें मोटे तौर पर किसी भी प्रकार के नागरिकता अधिकारों से वंचित रखा गया है। अमेरिका, यूरोप और जापान में अनेक वर्षों तक इस्तेमाल की जा चुकी लाखों कारों, वैन और मिनी बसों का निर्यात विकासशील देशों को किया जाता है, लेकिन खराब गुणवत्ता होने के कारण उनसे वायु प्रदूषण फैलता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयासों में बाधाएं पैदा होती हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है जो सोमवार को जारी की गई। ये अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जिसमें पुराने वाहनों को फिर इस्तेमाल करने के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए जाने का आग्रह किया गया है। इससे इस्तेमाल किए जा चुके वाहनों को आयात करने वाले देशों में भी स्वच्छ हवा और सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2015 से 2018 के बीच इस्तेमाल किए जा चुके 1,40,00,000 हल्के वाहन दुनिया भर में निर्यात किए गए। इनमें से 80% वाहन निम्न और मध्य आय वाले देशों को भेजे गए और उनकी भी आधी से ज़्यादा संख्या अफ्रीकी देशों को निर्यात की गई। वैश्विक स्तर पर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिससे वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या का आकार भी बढ़ रहा है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।